जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरी सूरत तौहीद के गिर्द घूमती है। तौहीद, तौहीद इसका मौजू है। इसके अंदर तौहीद के बहुत सारे दलाइल दिए गए हैं। शिर्क की मुजम्मत है। मक्की सूरतों का यही असलूब होता है ना, मक्की सूरतों में मौजू यही होता है, तौहीद, रिसालत और ईमान बिल आखरा। तो आज भी जो पहली आयत है उसके अंदर तौहीद की ही एक और हमें दलील दी गई है, एक बात की गई है तौहीद को समझाने के लिए। तो देखते हैं आयत नंबर 73 से सूरतुल अनआम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، کیسے؟ ساتھ حق کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر کیسے کوئی جانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے؟ تو وہ کائنات میں غور و فکر کرے، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا. اللہ ہے وہ ذات. جب انسان دیکھتا ہے نا آسمان کو، زمین کو، تو اس کے اندر یہ ایک سوچ آتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس ذات کو پہچانو جو ان کی تخلیق کے پیچھے ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہی ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. کیسے؟ بالحق، ساتھ حق کے. حق کا مطلب، ایک مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے با مقصد پیدا کیا، یعنی ان چیزوں کا کوئی مقصد ہے. ایسے ہی نہیں ہو جاتے. بعض مذاہب میں ہے کہ رام نے اپنی کھیلنے کے لیے اس کائنات کو پیدا کر دیا، اس نے بس ایسے ہی کھیل کھلواڑ کے لیے، بس ایسے ہی اپنے شوق کے لیے، بس ایسے ہی اپنے مشغلے کے طور پہ. نہیں، اللہ نے با مقصد پیدا فرمایا، ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا. اور دوسرا حق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سچائی جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. حق کا خود اپنا ثبوت ہے، حق خود اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. اور واقعی کیسے یہ آسمان اور زمین کی تخلیق حق ہے؟ آپ سوچیں، جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھیں، یہ جھوٹے جنہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں یا جنہوں نے خود خدائی کے دعوے کیے ہیں، بڑے فرعون لے لیں، نمرود لے لیں، کوئی اور لے لیں، جو بھی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. جیسے ان کو دیکھ لیں، جن کو بھی انہوں نے اپنے سوامی اور کیا کیا، اپنے گرو اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں. اچھا، ان کو وہ مانتے ہیں، ان کو خدا بنایا. ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا زمین و آسمان انہوں نے پیدا کیے؟ تو آگے سے جواب ہوگا نہیں. فرعون نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے زمین و آسمان پیدا کیے. نمرود نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ ہے حق. اس سے بڑا اور حق کیا ہو سکتا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے تھے کہ پیدا کرنے والا ان کا اللہ ہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو، کس نے زمین و آسمان پیدا کی؟ یہ چاند، سورج، ستارے کس نے پیدا کیے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ نے، اور اس نے با مقصد پیدا کی، اور یہ حق کے ساتھ پیدا کیے. یعنی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے، جنہوں نے، جس نے ان کو پرپز فل پیدا کیا، ان کا کوئی مقصد ہے. اور پھر ایک اور معنی حق کا یہ ہے کہ وہ چیز جو مفید ہوتی ہے، اس میں کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا. باطل میں فائدے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور حق میں نقصان کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا. ان یہ بیکار نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں، حق حقیقت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کو جاننے کے لیے یہ ان میں غور و فکر ہی کافی ہے کہ انسان یہ ان کے اندر غور کرے اور اللہ کو پہچانے، اور دیکھے کہ حکمرانی کا حق بھی پھر اللہ کا ہی ہے. جس نے پیدا کیا، پھر حکومت بھی کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی نا. तो इसका मतलब जमीन जिसपे आप और मैं चलते फिरते हैं, इसके ऊपर हुकूमत किसकी है? जब मैंने और आपने मान लिया कि पैदा करने वाला अल्लाह है इसका, तो हुकूमत भी तो उसी की होगी। फिर हम कैसे हुक्मरान बन बैठते हैं? जिस जमीन पे हम चलते फिरते हैं वो मेरी और आपकी मिल्कियत नहीं है, वो अल्लाह ने पैदा किया और वही उनका मालिक है। मानते हैं लेकिन फिर हम चाहते हैं कि हमारा ही हुक्म चले इस जमीन के ऊपर, इंसान का बनाया हुआ कानून चले इस जमीन पे, इंसान के बनाए हुए तरीके चले इस जमीन पे, कैसे चल सकते हैं? तुम तो मानते हो कि इसको बनाने वाला कोई और है। जब तुम्हारी चीज नहीं तो हुक्म क्यों चलाते हो उसके ऊपर? फिर हुक्म भी उसी का चलेगा जिसने पैदा किया। वयौमा यकूनु कुन फयकून, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या मतलब? यानी आज पैदा उसने किया ना, जिस दिन वो चाहेगा इसको खत्म कर देगा, जिस दिन वो चाहेगा सब कुछ टूट फूट का शिकार हो जाएगा, तारे झड़ जाएंगे, आसमान फट जाएगा, जमीन में जलजले आ जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, और सब निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। और उसके लिए उसको सिर्फ क्या कहना है? कलमाए कुन, हो जा। वो एक दफा कहेगा हो जा तो हो जाएगा। उसको इसके लिए कोई बहुत बड़े कोई इंतजाम करने की, कोई बड़े लश्कर भेजने की, इसको तोड़ने और कूटने के लिए और आसमान को फाड़ने के लिए कोई फरिश्तों को भेजने की जरूरत नहीं होगी। उसका कुन कहना ही काफी होगा। सुभान अल्लाह, कौलुहुल हक, ये उसकी बात भी हक है, ट्रूथ है, सच्चाई है, सच है, हक है। यानी इतना ही उसका कह देना काफी है, क्योंकि उसका कह देना भी हक है। बात तो अल्लाह ताला की बात भी हक, उसका काम भी हक। कोई चीज अबस नहीं, बेकार नहीं, झूठी नहीं, मनगढ़ंत नहीं, फजूल नहीं। जैसे हम तो बहुत सारे काम ही आज फजूल ही करते हैं, बहुत सारी चीजें बेकार करते हैं, अल्लाह का कोई काम बातिल नहीं। ठीक है, वलहुल मुल्कु यौम युनफखु फिस्सूर, और उसी के लिए बादशाहत होगी जिस दिन फूंका जाएगा सूर में, उसी के लिए इख्तियार होगा। जब सब चीजें दरहम बरहम हो जाएंगी ना, अल्लाह ताला सवाल करेगा लीमन इल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह वाहिदिल कहार के लिए है सिर्फ। तो यहां पे इख्तियार किसी का भी नहीं है। ये इंसान को थोड़े दिन के लिए लगता है ना कि ये मेरा बड़ा इख्तियार है, बड़ा कुछ है। आज भी बादशाहत उसी की है, कल भी उसकी होगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ना कि मुल्क बादशाहत इख्तियार को अल्लाह के पास आज भी है, तो ये क्यों कहा जा रहा है मालिक यौम? हाँ, ये क्यों कहा जाता है वलहुल मुल्क यौम? तो उस दिन जो बादशाहत होगी ना, आज भी है मगर उस दिन जाहिर हो जाएगी। वो जो उसको नहीं मानते थे वो भी मान लेंगे, क्योंकि गैब के पर्दे उठ चुके होंगे, सबके सामने हकीकत आ जाएगी। बड़े बड़े फिरौन मान लेंगे, अबू लहब मान लेगा, अबू जहल मान लेंगे। और फिर दूसरी बात क्या है, क्या मतलब है वला हुन मुल्क यौमा युनफखु फिस्सूर, उस जी दिन बादशाहत होगी उसकी, तो क्या आज नहीं है? नहीं, आज भी है मगर आज उसने छोटे छोटे ये एक जाहिरी किस्म के इख्तियार इंसानों को भी दे रखे हैं। और कुछ नहीं तो हमें ये लगता है कि हमारा अपने जिस्म पे इख्तियार है। चलो हम मुझे कोई बड़ी हुकूमत नहीं भी मिलेगी तो मैं अपने जिस्म पे इख्तियार रखती हूँ। कोई कहता मेरे हुकूमत मेरे घर पे है, कोई कहता है हुकूमत मेरे शहर पे मेरी हुकूमत है, कोई कहता है मुल्क पे मेरी हुकूमत है। तो ये छोटी छोटी हुकूमतें, छोटे छोटे इख्तियार, वजारतें, सदारतें, ये आज लोगों को मिली हुई नजर आती है ना, उस दिन ये भी छिन जाएंगे। उस दिन किसी के पास कोई भी इख्तियार नहीं होगा। मुल्क और शहर तो छोड़ें, इंसान का ये जो जिस्म है ना, जिसको अपने मिल्कियत में वो समझता है कि बस मैं जो चाहूंगी इसके ऊपर करूंगी, मेरा हुक्म इसके ऊपर चलेगा, मैं जो मर्जी चाहूं वो ही करूंगी, कौन मुझे होता है कुछ कहने वाला। ये जिस्म भी उसका साथ छोड़ देगा, उसका इस पे भी इख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि जुबान को वो चाहेगा कुछ बोले, वो कुछ और बोल रही होगी, अपनी जिल्द बोलने लगेगी, तो इंसान का क्या इख्तियार रह गया। कदम उधर को दौड़ेंगे जिधर पुकार होगी, वो अगर चाहे भी कि यहां से फरार हो जाए, भाग जाए यहां से, तो उसका जिस्म उसकी बात नहीं सुनेगा, उसके हाथ बोलेंगे, उसके पैर बोलेंगे, तो जिस्म अपने इख्तियार में कहां रहा। तो उस दिन क्या होगा, वो मालिक यौम दीन है, तो आज भी वही है और उस दिन तो सबको नजर आ जाएगा, और इस दिन ये छोटे मोटे इख्तियार भी सबके खत्म हो जाएंगे। किस दिन, यौम यनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। यहाँ पे कयामत का दिन नहीं कहा गया, बल्कि कयामत के दिन को क्या कहा गया, वो दिन जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। सूर क्या चीज है? सूर जो है ना, एक हॉर्न है, जैसे जिसको आप कहेंगे हॉर्न, हॉर्न है, जिसको कौन फूंकेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के एक बड़े फरिश्ते जिनकी ड्यूटी सूर पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लिए हुए, अपनी पेशानी झुकाए हुए, अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजर है। अल्लाहु अकबर, कैसे है इसराफील अलैहिस्सलाम को, जब से अल्लाह ताला ने सूर की ड्यूटी दी है, उस दिन से वो अपनी किस पोजीशन में है, पेशानी को झुकाया हुआ है और कान लगे हुए हैं अल्लाह के हुक्म पे, कब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मैं सूर में फूंक दूं। मुस्नद अहमद में एक रिवायत है कि एक सहाबी के सवाल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर एक नरसंगे जैसा है जो फूंका जाएगा, यानी हॉर्न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश के बाद सूर को पैदा किया और उसको इसराफील अलैहिस्सलाम को दे दिया, और वो इसको लिए हुए हैं और अर्श की तरफ निगाहें जमाए हुए हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पोजीशनिंग भी बताई कि कैसे है, उन्होंने उसको मुंह में लिया हुआ, यानी ही इज रेडी बिल्कुल, और अर्श की तरफ उनकी नजर है कि कब हुक्म हो और मैं इसको फूंक दूं। अल्लाह अकबर। और इसकी कितना बड़ा है ये सूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही उसके दायरे की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। इतना वो ह्यूज है, ये आसमान कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी है, उसके बराबर उसकी चौड़ाई है, इतना वो बड़ा है सूर। और बाज जगह पे इसके बारे में आता है कि तीन सूर फूंके जाएंगे, बाज जगह आता है दो सूर फूंके जाएंगे, ठीक है। तीन के बारे में क्या आता है कि पहला घबराहट का, दूसरा बेहोशी का, और तीसरा अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का। यानी पहला सूर जब फूंकने का उनको हुक्म दिया जाएगा ना इसराफील अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर, तो वो फूंकेंगे जिससे आसमान और जमीन की सारी मखलूक, कौन, आसमान और जमीन की सारी मखलूक घबरा उठेगी। इसमें सारों में कौन आ गए, सारी मखलूक, चाहे वो जानदार है या बेजान है, नेक है या बद है, जो भी है, मगर जिसे अल्लाह चाहे, ये एक्सेप्शन है। और वो कौन होंगे जिसको अल्लाह चाहे, वो अल्लाह को बेहतर मालूम है, वरना सारी मखलूक घबरा उठेगी, उसकी आवाज ही ऐसी होगी। ये सूर अल्लाह के हुक्म से देर तक बराबर फूंका जाएगा, यानी वो बंद नहीं होगी आवाज की, एक दफा ब्लो कर दिया गया बस उसके बाद खत्म, नहीं, बराबर वो चलता ही रहेगा। और पहाड़ इस सूर से कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे होगा जैसे बुलंद जोरदार चीख है, और पहाड़ इससे बादलों की तरह चलने लगेंगे, रेत रेत जर्रा जर्रा हो जाएंगे, जमीन में इतना जबरदस्त जलजला आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, पूरी मखलूक घबरा उठेगी, वो मखलूक जमीन भी मखलूक, पहाड़ भी मखलूक, वो इस तरह थर थर कांपने लगेगी, ये जमीन जैसे कोई कश्ती दरिया के बीच में तूफान में फंस गई हो और गोते खाने लगे। कभी देखा आपने वो कश्तियों को दिखाते हैं ऊपर से समुद्रों के अंदर है, तूफान आ गया, वो गोल गोल घूम रही है, गोते खा रही है। या मिसल उस हांडी के जो अर्श में लटकी हुई है, जिसको हवाएं हिलाए जा रहे हैं। उस दिन जमीन जबरदस्त हरकत में आ जाएगी, बहुत सख्त इसके अंदर जलजला होगा और मुसलसल जलजले होंगे, रहटेंगे नहीं। हमें चंद सेकंड के लिए जलजला आ जाता है ना, तो जान निकल जाती है इंसान की, इतनी घबराहट होती है। जलजला चीज ही ऐसी, अल्लाह अकबर। और इसके पीछे मुसलसल जलजले आएंगे और दिल धड़कने लगेंगे और कलेजे उलटने लगेंगे और लोग इधर उधर गिरने लगेंगे। वो दिन होगा कि माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे। वो दिन होगा बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शयातीन जो होंगे घबराहट और परेशानी के मारे भागते फिरेंगे, जमीन के किनारों की तरफ जाएंगे, वहां से फरिश्ते उनको मार मार के हटाएंगे। लोगों का तो, इंसानों का तो हाल ही ना पूछे, वो तो इतने परेशान हाल हवास बाख्ता होंगे कि कोई जाए पना नजर नहीं आएगी, किधर जाके छुप जाए, किधर चले जाए, कोई अल्लाह के हुक्म से बचाव नहीं नजर आएगा। एक दूसरे को आवाजें देंगे लेकिन सारे ही अपनी अपनी मुसीबतों में पड़े हुए होंगे। या रब अल्लाह उस दिन की हौलनाकी से हम सबको बचाना, अल्लाह उस दिन की दहशतों से हम सबको बचाना, अल्लाह उस दिन की मुसीबत से हम सबको बचाना कि क्या हालत होगी, क्या हालत होगी इंसान की। अल्लाह ताला तो हमें माफ कर दे कि अचानक जमीन फटनी शुरू हो जाए, कोई कहीं से फट रही होगी, कहीं से फट रही होगी। मुझे पता है इंसान इमेजिन भी करता है ना इसको, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह की कैसी हालत होगी, जब जमीन फटेगी ना तो तब तो बदतरीन हालत हो जाएगी, कलेजे कांपने लगेंगे, दिल उलट जाएंगे और इतना सदमा और गम होगा जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। अब जब आसमान की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि आसमान घुल रहा है और वो भी फट रहा है, सितारे झड़ने शुरू हो गए, सूरज चांद बेनूर हो रहे हैं। तो ये दिन का देखना भी जो है ना, ये भी इस कदर हौलनाक होगा, इतना मुश्किल होगा, ये मुसीबत इतनी बड़ी होगी, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। देखिए छोटा सा एक जलजला आ जाता है, छोटी सी एक कोई तूफान आने लगता है, लोगों की हालत क्या हो जाती है, दुबक के बैठ जाते। वो जिनको कभी गॉड याद ना आया वो भी गॉड गॉड पुकारने लगते, जो मानते नहीं उसको वो भी कुछ कहने लगते हैं। हाँ तो ये मुसीबत का दिन कैसा होगा। अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। तो ये जब तक हालत अल्लाह चाहेगा तब तक यही घबराहट का आलम रहेगा। फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को जो जो मौत का है या जिसको कहेंगे बेहोशी का है, उसके नुस्खे का हुक्म देंगे। अब जब वो फिर वो दूसरा सूर फूंकेंगे, उसके फूंकने से जितनी जमीन आसमान की सारी मखलूक है वो उसको मौत आ जाएगी या बेहोश हो जाएंगे, जो भी कह सकते हैं वो सारे मर जाएंगे सिवाय मलकुल मौत के। वो अल्लाह ताला के हजूर में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह जमीन आसमान की सारी ही मखलूक मर गई है जिस सिवाय जिसको तूने चाहा। अल्लाह ताला सवाल करेंगे, ये बताओ बाकी कौन है, वो जवाब देंगे बाकी तो तू हय और कयूम है, तुझ पे कभी फना नहीं है, तेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते हैं और जिब्राइल और मीकाईल है। तो उस वक्त अर्श को जुबान मिलेगी और बकर एक कहेगा, परवरदिगार क्या जिब्राइल और मीकाईल भी मरेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने अपने अर्श से नीचे वालों पे सब पे मौत लिख दी, कुल्लु मन अलैहा फान, जब हम पढ़ते हैं ना तो यही मतलब है कि हर एक पे मौत है। इससे पता चलता है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ना जिब्राइल का, ना मीकाईल का, ना इसराफील का, किसी का अल्लाह मोहताज नहीं। अब आप देखें कि क्या होगा, तो फिर अल्लाह ताला हुक्म देगी कि जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को मौत आ जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास आएंगे और खबर देंगे जिब्राइल और मीकाईल भी मर गए। अल्लाह ताला बावजूद ये कि अल्लाह को पता है, अल्लाह पूछेगा बाकी कौन है, मलकुल मौत जवाब देंगे कि बाकी एक तो तू है जिसको बका है, जिसके ऊपर कोई फना नहीं, तेरे अर्श के उठाने वाले। अल्लाह फरमाएगा अर्श के उठाने वाले भी मर जाए उस वक्त फिर उनको भी मौत दे दी जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर को अर्श ले लेगा, मलकुल मौत हाजिर होके अर्ज करेंगे, या अल्लाह अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। अल्लाह ताला फरमाएगा, हालांकि अल्लाह जानता है कि बाकी कौन रहा। मलकुल मौत जवाब देंगे, एक तू जिस पे मौत नहीं है और एक तेरा गुलाम मैं। अच्छा, इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दी जाएगी। फिर उसके बाद अब जब मलकुल मौत पूछते हैं तो अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं, तो मलकुल मौत जवाब देते हैं कि अल्लाह एक तू है, तू तुझ पे मौत नहीं है और एक अल्लाह मैं तेरा गुलाम। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू भी मेरी मखलूक है, तुझे मैंने एक काम के लिए पैदा किया था जिसको तू कर चुका, अब तू भी मर जा। चुनाचे वो मर जाएंगे, अब अल्लाह ताला अकेला बाकी रह जाएगा। जो अकेला है, तन्हा है, उसका ना कोई माँ, ना बाप, ना औलाद। जिस तरह मखलूक को पैदा करने से पहले वो अकेला था, फिर वो जमीनों को और आसमानों को इस तरह लपेट लेगा जैसे दफ्तरी कागज को लपेटा जाता है। फिर इन्हें 3 दफा उलट पुलट करेगा, फिर कहेगा मैं जब्बार हूं, मैं किबरियाई वाला हूं। फिर ये मैंने जो आपको बात पहले बताई है ना कि 3 दफा अल्लाह ताला फरमाएगा लीमानिल मुल्क यौम, आज मुल्क का मालिक कौन है, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। कहाँ हैं वो सारे जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा हैं, जो आज खुदा बने बैठे हैं, जो अपने आप सामने सजदे कराते हैं लोगों से, जो अपने सामने रुकू कराते हैं लोगों से, जो अपने आप को कोई चीजें समझते हैं। तो ये हैं वो 3 नुस्खे जो फूके जाएंगे, ये दूसरा था। और तीसरा फिर उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, और अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम और फिर और भी जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदा करेगा। इसके बारे में आता है कि अल्लाह ताला फिर जमीन और आसमान को बदल देगा, अल्लाह ताला उनको खींच देगा जिस तरह चमड़ा खींचा जाता है, कहीं ऊंच नीच बाकी नहीं रहेगी। फिर एक आवाज के साथ इस नई जमीन के अंदर सारी मखलूक हो जाएगी, यानी वहां पे आ जाएगी। अंदर वाले अंदर होंगे, ऊपर वाले ऊपर होंगे। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श तले बारिश बरसाएगा, फिर आसमान को हुक्म देगा, वो 40 दिन तक बारिश बरसाता रहेगा, यहाँ तक कि पानी उनके ऊपर आ जाएगा। फिर ये जो जिस्म होंगे इंसानों के, इनको हुक्म होगा, वो उगेंगे, इस तरह उगेंगे जैसे जमीन से सब्जियां उगती हैं, प्लांट्स उगते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने देखिए कितनी जगह कुरान पाक में फरमाया ना कि मुर्दा जमीन को देखो हम इसको कैसे जिंदा करते हैं, इसी तरह तुम्हें उठाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह इंसानों के जिस्म उठ खड़े होंगे, जैसे दाने से प्लांट्स निकल आते हैं ना। फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, आज तो ये चीजें देखी जा सकती हैं, आप उसको कैमरा लगा लेते हैं वो, और उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप देखते हैं अच्छा ऐसे बीज फटा, उसके अंदर से प्लांट निकला, फिर ऊंचा हुआ, फिर ऊंचा हुआ, फिर इतना बड़ा बन गया। तो इस तरह इंसानों के जिस्म हो जाएंगे जैसे वो दुनिया में थे। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि मेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जी उठे, वो भी जी उठेंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम को भी हुक्म होगा। फिर वो सूर लेके मुंह से फूकेंगे, तो फिर मुंह से लगा लेंगे अभी, फिर फरमान होगा, जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाएंगे, दोनों भी उठेंगे। फिर अल्लाह ताला रूहों को बुलाएगा, मोमिनों की रूहें जो होंगी वो नूरानी होंगी, और काफरों की रूहें जो होंगी वो स्याह होंगी, उनको लेकर अल्लाह ताला सूर में डाल देगा। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अब सूर को फूंके, तो वो अब सूर को फूंकेंगे ना, तो जब वो सूर को फूंकेंगे तो वो रूहें उसमें से निकलेंगी, क्योंकि उसमें डाल देंगे ना, जैसे शहद की मक्खियां निकलती, सारा खला उनसे भर जाएगा, इतनी जाहिर रूहें होंगी। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए, अल्लाह के हुक्म के ऊपर सब रूहें अपने जिस्मों में नथनों के ये नॉस्ट्रिल्स के जरिए चली जाएंगी। और जिस तरह जहर इंसान के एक एक जिस्म के अंदर तक चला जाता है, इस तरह रूह सारे रगों में हर जगह पहुंच जाएगी, रूहें रूहें में चली जाएगी। उस वक्त फिर जमीन भी फटेगी और लोग अपनी कब्रों से भी निकल खड़े होंगे, क्योंकि उनके अंदर भी रूहें पड़ गई ना, वो जो ऊपर थे मरे थे उस वक्त उनमें भी पड़ गई, जो अंदर थे उनके अंदर भी पड़ गई। और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से जमीन फटेगी और आप उठेंगे, और तब सारे लोग दौड़ते हुए अल्लाह की तरफ पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर, उस दिन का फिर कहेंगे आज का दिन बड़ा भारी है, वो दिन बड़ा ही मुश्किल है, सब लोग नंगे पैर होंगे, नंगे जिस्म होंगे, कोई की हाल बेहाल होंगे, एक मैदान में आके जमा हो जाएंगे, ना कोई निगाह उठेगी, ना कोई कोई बहुत बातें होंगी, ना कोई कुछ होगा, खामोशी और लोग गिरिया जारी कर रहे होंगे, इतना रोएंगे कि आंसू खत्म हो जाएंगे और आंखों से आंसुओं की बजाय खून निकलने लगे। पसीना इतना बहेगा, जाहिर है घबराहट में इंसान को कहते हैं ना उसके पसीने निकल गए, मेरे तो पसीने छूट गए। तो क्या होता है घबराहट की वजह से, कितनी घबराहट होगी। अल्लाह उस दिन की हौलाकी से हमें महफूज रखना, अल्लाह उस दिन की हौलाकी से हमें हमारी नस्लों को भी महफूज रखना, हमारे आबा अजदाद को महफूज रखना, तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को महफूज रखना। बड़ा ही मुश्किल दिन है, बड़ा ही मुश्किल दिन है जिसकी खबर हमें अल्लाह ने दे दी, हम पर करम फरमाया कि इसकी खबर हमें दुनिया में अता फरमाया। तो वो अल्लाह वो है जिसकी बादशाहत उस दिन होगी, बता उस दिन और किसकी बादशाहत होगी। सब घबराहट में पड़े होंगे। ये है अल्लाह का तारुफ कि वो अल्लाह कौन है। तौहीद की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वो अकेला ही खुदा है। तो यहां से साबित होता है आज शायद इंसानों को और भी खुदा नजर आ रहे हैं, कोई कोई खुदा बन बैठा है, कोई किसी तरह से खुदा बन बैठा है। हाँ उस दिन सब जब पर्दे उठेंगे तो पता चलेगा कि रब तो वो एक ही है, खुदा तो वो एक ही है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा सबको समझ आ जाएगा। देखिए कयामत तो जब आनी है ना, हशर का दिन जब होना है वो तो बाद की बात है, जब कयामत का सूर ही फूंका जाना है ना सब समझ आ जानी है। ये जो सारे बड़े बड़े बन के बैठे हुए हैं खुदाई के दावे करने वाले, सबको समझ आ जाएगी। इंसानों को बाकियों को भी समझ आ रही है, जो उनके मुरीद हैं या पैरोकार हैं या उनको पूजने वाले हैं उनको भी समझ आ जाएगी, और जो बादशाह बने हुए उनको भी समझ आ जाएगी कि असल बादशाह कौन है। आलिमुल गैबी वश्शहादा, वो है जो गैब और हाजिर का जानने वाला। कोई और भी है जो गैब का जानने वाला हो? दावे तो बड़े लोग करते हैं हमें गैब का इल्म, हमसे आके पता कराओ अपने फ्यूचर का और मौत का, उनको अपनी नहीं पता होता कि मैंने कल मर जाना। अल्लाह अकबर, जानने वाला है वो गैब का भी और उसका भी जो हाजिर है। ये गैब किसके लिए? इंसानों के लिए, मखलूक के लिए जो चीजें गैब है, अल्लाह के लिए कोई चीज गैब है ही नहीं, उसके लिए हर चीज ही जाहिर है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो जो हिकमत वाला है और बाखबर है, वो अपनी हिकमत के साथ इस निजाम को चलाए हुए है। उसकी हिकमत है उसके सारे फैसलों में, और वो बाखबर है। जो बाखबर होगा वही हिकमत से फैसले करेगा ना, जिसको खबर ही नहीं उसकी क्या हिकमत होगी, वो हर चीज से बाखबर है। कोई और भी ऐसा है जो हर चीज से बाखबर हो और जिसके फैसले, हर फैसला हिकमत पे मबनी है? तो ही सीखनी है ना तो इस सूरत से सीखनी। जैसे सूरत के अंदर आप डूब जाए, ये सूरत आपको सीधा कर देगी तौहीद में, और फिर तौहीद के अलमबरदार, तौहीद के ऊपर चलने वाले जो यानी अंबिया के बाप कहलाते हैं अबुल अंबिया, और जिनको मुशरिकीन भी अपना बड़ा मानते थे, मुशरिकीन मक्का, उनकी बात हो रही है। अवलीन मुखातिब मुशरिकीन मक्का ही थे ना, उनको बताया जा रहा है तुम तो शिर्क करने लगे हो, देखो तो सही जिनकी तुम कहते हो हम उनकी इतबा करते हैं, उनके दीन पे चलते हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जिनका तुम इतना नाम लेते हो, जरा उनकी तो बात सुन लो। वो तो शिर्क से ऐसे पाक थे, वो तो लोगों को शिर्क से दूर करने वाले थे। तो यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अब बात बताई जा रही है, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आगे बात आएगी भी, और कुरान पाक में जगह जगह पे भी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हनीफ थे, वो तो यकसू थे, वो तो एक अल्लाह की तरफ अपना रुख करने वाले थे। तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शिर्क से बहुत बेजार थे, इसलिए अब तौहीद की उन्होंने क्या बात दलाइल दी है। याद रखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चार मुनाजरे जो है ना वो कुरान पाक में आते हैं। एक मुनाजरा उन्होंने अपने बाप से किया था, और वो मुनाजरा सूरह मरियम में आता है, आयत नंबर 42 में आप देख सकते हैं। एक मुनाजरा उन्होंने अपनी कौम से किया, जिसको हम यहाँ पे जिसका जिक्र पढ़ेंगे। एक मुनाजरा इन्होंने नमरूद से किया था जो बादशाह वक्त था, और वो मुनाजरा आप पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, इसको इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी यहयी व युमीत, तो उसने कहा था अना उहयी व उमीत, है ना, तो वो वाला मुनाजरा आपने पढ़ा था। और इसी तरह काफिरों से मुनाजरा किया था उन्होंने, जो सूरह अंबिया में 58 आयत में आप देख सकते हैं, जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, फिर लोग आए थे, फिर उनसे जो बातचीत हुई थी, तो वो मुनाजरा था। तो ये चार मुनाजरे उनके ये दलाइल है तौहीद के। अब यहाँ पे जो एक मुनाजरा मैंने आपको बताया कि अपनी कौम से उनका था, उसकी भी बात आएगी इंशाल्लाह आगे। और इस कहा इब्राहिम ली अभी ही आजरा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और इस जब आता है तो मतलब क्या होता है, जब का तो हमने लिख दिया लेकिन क्या मतलब है, यानी याद करो वो वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, जिसका नाम क्या था आजर, उस आजर से कहा था। अब आजर के बारे में भी बहुत सारे अकवाल आपको तफसीरों में मिल जाएंगे। बाद ने कहा कि आजर बुत का नाम था, इसलिए जो है ना उन्होंने कहा कि इसलिए उनके बाप का नाम भी आजर पड़ गया। और बाद ने कहा कि नहीं, आजर जो था ना नाम उनके चचा का था, उनके बाप का नाम आजर नहीं था, उनके बाप का नाम कुछ और था, तारिफ था, तो ये तो चचा थे उनके। बाद ने कहा कि देखें आजर का मतलब है खताकार, तो वो कह रहे हैं कि ए खताकार तू बुतों को इला बना रहा है। तो बाहर क्या है, ये बहुत सारी आपको तफसीरों में मिल जाएंगी ये बातें, लेकिन हमने देखिए ये कहना कि नहीं वो चचा था ये था, सिर्फ इसलिए कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि अंबिया के फादर्स कभी जो है ना वो काफिर नहीं हो सकते, ऐसी बातों की जरूरत ही नहीं है। जब अल्लाह का कुरान कह रहा है वो अपने बाप आजर से उन्होंने कहा, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस तरह तावीलें करने की। असल में बहुत सारे लोग इस चीज से फिर वो आगे बनाते हैं कि भाई इसी से लेके फिर के नहीं भी अबू तालिब भी मुशरिक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नबी का बाप या किसी नबी का चचा या वो उसके वालदैन नहीं मुशरिक हो सकते, बस इस तरह की बातें बनाई हुई। हालांकि बहुत सारी रिवायात हमें और मिलती हैं जिससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है, और कुरान कह रहा है अपने बाप से कहा, तो हम इसी को समझें कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा क्या अतत्तखज़ु असनामन आलिहा, क्या तू बुतों को इलाह बनाता है। अब ये देखें कि यहां से पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया कि मेरा बाप है, आई रिस्पेक्ट हिम, तो मैं तो इनको नहीं कह सकता कि देखें ये आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग इसमें इतने रिलक्टेंट होते हैं कि हमारे माँ बाप अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो कोई मसला नहीं, बस हम उनको कैसे कहें, हम तो उनको कुछ बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जब कोई चीज़ गलत हो रही है और वो भी अकीदे के अंदर कहीं गलती हो, तो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी हमारी घर वालों की है कि हम उनको इस चीज से बाज करें। हाँ रिस्पेक्ट जरूर रहेगी, जब आप उनको समझा भी रहे होंगे तो उसमें भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम उनको बस करने देते हैं जो वो कर रहे हैं, नहीं वो बड़े हैं ना तो वो करते रहें जैसे भी उनका दिल चाहता है। नहीं, उन्होंने इसमें झिझक महसूस नहीं की कि मेरा बाप है मैं कैसे इसको कहूँ, या मेरा बाप मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझसे कट ऑफ कर देगा, नहीं। इसलिए कि जब आप समझते हैं ना इस बात को, जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि तौहीद नहीं है तो कुछ नहीं है, इससे बेहतर है कि इंसान एक जानवर हो, क्योंकि काफिर, मैं क्यों आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि काफिर कयामत के दिन आरजू करेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता, जब वो देखेगा ना जानवर मिट्टी हो रहे, वो कहेगा काश मैं भी मिट्टी हो जाता, मैं एक जानवर ही होता मट्टी हो जाता, आज मेरा हिसाब तो ना होता, क्योंकि उसको पता है कि आगे मेरे लिए क्या है, ये तो अच्छे छूट गए, ये मट्टी तो हो गए ना, उसको अपना तो अंजाम आगे नजर आ रहा होगा। तो जो शिर्क है ना वो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि वो तो इंसान, इससे बेहतर है कि इंसान कोई जानवर हो जाता, कोई कुछ होता जाता, लेकिन शिर्क ना करता। जब पता चल जाए ना कि ये तबाही है, तबाही है, हलाकत है, आग है, शिर्क मीन्स आग, शिर्क मीन्स कि मैंने अपने आप को आग में डाल दिया, तो तब इंसान खुद ही जिनसे उसको मोहब्बत होती है उनको खींचता है, उसको पता है कि अगर ये इसमें मर गए तो क्या अंजाम होगा, वो
उससे चैन से फिर बैठा जाएगा, फिर वो क्या ये कहेगा, नहीं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लिहाजा इनको मैं नहीं कुछ कहती। नहीं, ये नहीं कहेगा वो, उसको तो तड़प लग जाएगी। क्या फिर उसको कहना पड़ेगा आप समझाएं अपने वालदैन को, या आप अपने समझाएं अपने बच्चों को, या अपने रिश्तेदारों को, ये कहना पड़ेगा? क्यों थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तड़प? क्यों नहीं चैन से बैठ जाते थे? क्यों एक दफा बता के नहीं चुप हो जाते थे? क्योंकि वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस आग का ईंधन बने जिस आग से पनाह मांगी गई है और जिस आग से अंबिया ने भी पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, किसने सिखाई हमें ये दुआ? वकीना अजाबन नार, किसने सिखाई हमें ये दुआ? अल्लाह ताला ने कुराने पाक में सिखा दी हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मसनून दुआओं में हमें ये दुआ मिलती है। पता चलता है कि ये तो ऐसी जगह है जिसके एक हिस्सा भी दूसरे से पनाह मांगता है कि अल्लाह मुझे दूसरे हिस्से से बचा ले, एक हिस्सा दूसरे को खाए जाता है। ये वो जगह है जिसको देख के फरिश्ते रो पड़े। तो कौन अपने प्यारों को ऐसी जगह पे जाते देख सकता है, ऐसे रास्ते पे चलते देख सकता है कि जो रास्ता इस तबाही की तरफ ले जाता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम झिझके नहीं, बाप थे, लेकिन उन्होंने फरमाया तत्तखिज़ू असनाम बना लिया, क्या आप अब्बतों को, अब्बा जान अब्बतों को इला बनाते? इन्नी अराक व कौम कफी दलाल मुबीन, अल्लाह के ए अब्बा जान, मैं तो आपको भी और आपकी कौम को भी खुली गुमराही में देखता हूँ। ये तो गुमराही का रास्ता है। गुमराही का मतलब क्या? रास्ता गुम कर दे। आपका भी और आपकी कौम भी सारी गलत रास्ते में चल पड़ी है। कहते ये हक था ना, ये बात सही थी कि मैं आपको गलत रास्ते पे देख रहा हूँ, ये सही नहीं है जिस पे आप चल रहे। अब बाज दफा हम लोग किसी को बताते भी है ना, तो इतना उसको यानी जिसको कहेंगे ना कंफ्यूजिंग कर देते हैं, इतने उसके ऊपर वो कवर चढ़ा देते हैं कि हकीकत समझ ही नहीं आती। ऐसे कहेंगे कि आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस ठीक है चलते रहे, जिस पे थोड़ा बहुत ऐसा जरा कह दिया, मगर सही नहीं कहते कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, आप इस रास्ते को छोड़ दें, ये नहीं कहते। ये कहने की जरूरत ही नहीं होती, नहीं ना मुझसे नाराज हो जाएंगे। छोड़ो, ये नहीं कहना, बस ऐसा हल्का फुल्का कहो जिससे वो भी सेटिस्फाइड रहे और मेरा काम भी हो जाए कि मैंने तो कह दिया। बर्मला क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं साफ साफ बताते कि ये तबाही है, ये गलत रास्ता है, ये दौलीन का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है? देखें, जब पैगाम हक का देना होता है ना, तो हक बात कहने को क्लियर करना चाहिए। ये जो घुमा फिरा के बातें करना, इस तरह उस तरह बातें करना, हेर फेर करके बातें करना, ना दूसरा नाराज हो ना मेरा कुछ जाए, बस कह भी दिया और ना भी कहा, ये बातें थोड़ी होती हैं हक की। हम इस तरह की जॉब करते हैं तौहीद फैलाने की। हमसे तो किसी को ये नहीं कहा जाता कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये बिदत है, आप इससे बाज रहे हैं, ये नहीं कहा जाता। तो ईद हमने क्या फैलानी?